ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थोड़ा और एनर्जी के साथ बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, ओम शांति। तो आप बहुत कुछ सीखते समझते आ रहे हैं और आज उसी सीक्वेंस में हम जानेंगे समय के चक्र को। यदि आपसे एक प्रश्न पूछें कि टाइम इज साइक्लिक और लीनियर, तो क्या कहेंगे? हम सभी जीवन में बहुत सी बातों को साइक्लिक वे में होते हुए देखते आए हैं। दिन और रात का चक्र, सुबह दोपहर शाम रात्रि, ऋतुओं का चक्र। एक बच्चा पैदा होता है, बाल अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर पौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर अगेन रीबर्थ, बचपन से फिर शुरुआत होती है। तो बहुत कुछ हम देखते हैं, जल चक्र, बहुत कुछ इस संसार में साइक्लिक वे में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें सिग्निफाई करता है कि टाइम जो है वो एक चक्राकार गति से चल रहा है। और कोई भी चक्र, उसकी एक अवधि होती है, जिस अवधि के बाद उस चक्र की पुनरावृत्ति होती है, एक रिपीटेशन का टाइम स्पैन होता है। कोई भी चक्राकार गति से चल रहा है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, पौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, सुबह दोपहर शाम और रात। ऐसे ही इस संसार में भी जो खेल चल रहा है वो भी एक चक्राकार गति से चल रहा है, यानी इस खेल में भी अलग अलग अवस्थाएं हैं और इस चक्र की पुनरावृत्ति का एक टाइम पीरियड है। उस चीज को आज हम थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे। समय चक्रीय है और अनंत है, ये इटर्नल है। जैसे दिन और रात का चक्र, मौसम चक्र, या फिर हम कहें जल चक्र, भाप बन रहा है, बादल बन रहे हैं, फिर बरस रहे हैं, फिर पानी सागर में, अगेन प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अगर हम कहें शुरुआत कहां से हो रही है, दिन और रात के चक्र को ही ले लीजिए, शुरुआत किसको कहेंगे? ये कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, सुबह दोपहर शाम और रात्रि। शुरुआत हम किसको कहेंगे? हम मान लेते हैं कि भाई चलो सुबह को हम शुरुआत कहते हैं, बाकी अदरवाइज ये साइक्लिक है। साइक्लिक है मतलब इसका कोई बिगिनिंग नहीं है और इसका कोई एंड भी नहीं है, पर सुबह को हम एक बिगिनिंग मान लेते हैं, राइट? ऐसे ही संसार में धरती पर जो चक्र चल रहा है, इसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं जिसको हम युग कहते हैं, और ये चार युग में बांटा गया है। और वो चार युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये भी साइक्लिक चल रहा है, सतयुग था, सतयुग फिर आएगा, कलयुग है और कलयुग कभी पार हो जाएगा। जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये बहुत साइक्लिक वे में सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, दिन और रात के चक्र को हम एक जीवन काल में अनेक बार रिपीट होते हुए देखते हैं। हमें पता है कि अभी सुबह 9:45 है तो कल सुबह भी लगभग लगभग ऐसा ही होगा, सूर्य जहां पर है लगभग वहीं पर आपको मिलेगा। लेकिन ये यहां पर जो युगों का चक्र चल रहा है उसका टाइम स्पैन क्या है ये हमें पता नहीं है। दिन और रात 24 घंटे में रिपीट होता है, ये हम हर एक मानेंगे। ऋतुओं का चक्र 365 दिन में रिपीट हो रहा है, अभी जून का महीना है, इत्तफाक इस बार बारिश जल्दी आ गई है, बट अदरवाइज जून में अच्छी गर्मी होती है एंड वी एक्सपेक्ट कि अगले जून में वैसे ही अच्छी वाली गर्मी होगी। ये 365 दिन में रिपीट हो रहा है। हम कहेंगे एक साल 365 डेज इसका रिपीटेशन स्पैन है। ऐसे ही इस धरती पर जो खेल चल रहा है जिसे हम युगों का चक्र कहते हैं, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसके रिपीटेशन होने की अवधि कितनी है ये आप और हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक जीवन काल में चारों युगों को रिपीट होते हुए हम कोई देख नहीं सकते हैं। और हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या देखा था वो हमें याद भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को अल्पज्ञ कहा जाता है और परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। तो परमात्मा जो इस सृष्टि नाटक के रचयिता हैं, क्रिएटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं, वो परमात्मा पिता इस सृष्टि में चल रहे खेल के संपूर्ण ज्ञान से हमें अवगत कराते हैं। यदि हम आपको नॉलेज देंगे तो वो नॉलेज अधूरा होगा, क्योंकि हमें मालूम ही अधूरी बातें हैं। लेकिन ये सृष्टि के जो क्रिएटर और डायरेक्टर हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जिन्हें सृष्टि के आदिकाल से लेकर अंत तक का संपूर्ण ज्ञान है, वो जो ज्ञान देंगे वो होगा कंप्लीट नॉलेज। यस और नो? यस और नो? तो परमात्मा पिता हमें समझाते हैं कि सृष्टि पर जो खेल चल रहा है वो एंटायर साइकिल है 5000 वर्ष का खेल। कितने समय का खेल? 5000 वर्ष का खेल। हमारे संतों ने, साधुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपना कुछ अंदाज लगाया होगा, उनके भी कैलकुलेशन की कुछ विधि रही होगी, जिस विधि से किसी ने लाखों वर्ष का कहा, कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर उसका डबल, त्रेता ट्रिपल और सतयुग 4 गुना। सबके अपने अपने कैलकुलेशन, अपना अपना हिसाब रहा, लेकिन मनुष्य का हिसाब और परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसको हम स्वीकार करेंगे? चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, लेकिन मानव होने के नाते से है तो अल्पज्ञ ही। वैज्ञानिकों ने पहले कहा कि भई पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, आम जनता ने क्या कहा होता होगा। फिर वैज्ञानिकों का शोध चला और उन्होंने कहा अरे नहीं, ये तो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो आम जनता ने क्या कहा, हाँ अब ये सही है। उस समय वो सही था क्योंकि उससे हटके अलग कुछ सत्य हमारे सामने आया नहीं था। ऐसे ही इस संसार में जब तक परमात्मा सृष्टि नाटक के निर्देशक इस धरती पर नहीं आ जाते हैं और उनका संपूर्ण और सत्य ज्ञान नहीं देते हैं, तब तक हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे इतिहास के लेखकों ने जो सारी बातें लिखी और कही, हम आम जनता ने क्या किया, उसे स्वीकारा कि भाई ठीक है। लेकिन अब जब परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है और उसे हम थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करके देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और हमें ये मिल रहा है कि इसका रिजल्ट तो बहुत ही अद्भुत है और अपूर्व है, बहुत ही सुंदर है, तब हमें लगता है कि निश्चित है ये ज्ञान थोड़ा भले आज तक के कन्विक्शन से अलग है लेकिन यही सत्य है। क्योंकि जब हम सत्य तक पहुंच जाते हैं तो उसका रिजल्ट होता है सत्य की खोज की रिजल्ट क्या होती है? सत्य की खोज की रिजल्ट होती है खुशी, सत्य की खोज की रिजल्ट होती है आनंद। आप जब सत्य को जान जाते हैं तो उस पर चल के आपको जो रिजल्ट मिलता है वो हरदम पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये परमात्मा पिता कहते हैं जैसे 24 घंटे को हमने एक दिन कहा है, 365 दिन को हमने एक वर्ष कहा है, ऐसे 5000 वर्ष को कहा जाता है एक कल्प। इसमें चार युग हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें हम बिगिनिंग किसको कहेंगे, वो समय जहां पर सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलता था, एक ऐसा समय जहां एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा और एक कुल हुआ करता था, एक ऐसा समय जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, एक ऐसा समय जहां घी और दूध की नदियां बहती थी कहा गया है, एक ऐसा समय जहां शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे ऐसा कहा गया है। माना ये सृष्टि पर एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जहां पर यथा राजा रानी तथा प्रजा तथा दास दासी सभी मर्यादित संयमित जीवन व्यतीत करते थे, हरेक के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हुआ करती थी। घी दूध की नदियां बहती हैं क्या? क्या आपको लगता है सत्युग में बहा करती थी? ये समृद्धि का सूचक है, यानी वहां किसी भी प्रकार की कमी किसी को भी नहीं हुआ करती थी। उसे कहते हैं स्वर्ण काल, गोल्डन एज। वहां अदल बदल के रूप में यहां पर आजकल नोट्स चल रहे हैं, वहां क्या चलता था? वहां क्या चलता था? सोने के सिक्के चलते थे। तो वो है स्वर्ण काल, जहां पर आत्मा की जो स्थिति थी वो कंप्लीटली प्योर थी। वहां हर नर देवता और हर नारी देवी कहलाती थी, और भारत की संस्कृति इतनी महान है कि आज भी, बाकी स्थानों का मुझे इतना नहीं पता, पर आज भी राजस्थान में बहनें अपने नाम के पीछे देवी लगाती, कमला देवी, शारदा देवी, गुड़िया देवी, जो इस बात को सिग्निफाई करती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स निश्चित रूप से देवी और देवता रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, ये जो सारी बातें हम सुन रहे हैं ये कल्पना है या सत्य है? हां जी, ये परम सत्य है, ये हमारा ही अपना इतिहास है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि भारत देवभूमि था, भारत देवभूमि रियल में थी, और वो समय था सत्युग का समय। 5000 वर्ष के इस पूरे चक्र में चारों ही युग एक समान है, यानी कलयुग कम, द्वापर और ज्यादा, त्रेता और ज्यादा, सत्युग और ज्यादा नहीं, चारों बराबर, यानी हर युग 1250 वर्ष। तो सत्युग का ये जो समय था वहां पर पूजा पाठ, भक्ति उपासना, दान पुण्य होगा या नहीं होगा? हाँ जी, होगा, क्योंकि अच्छे लोग थे, पर देंगे किसको ये भी तो सोचिए, लेने वाला कौन? सारे ही समृद्ध होंगे, सबकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई होंगी, इसलिए किसी को कुछ देने की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। परमात्मा ने हमें समझाया ये वो समय है जहां पर किसी भी प्रकार से अधर्म, अन्याय, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार नहीं होता था। वहां सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत पड़ेगी? वहां सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां डॉक्टर्स होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, निरोगी कंचन काया होगी, क्योंकि आत्मा प्योर होगी, पांच तत्व भी प्योर होंगे, पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर भी प्योर होगा, जिससे कोई बीमारी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा गोल्डन एज वो एज है जहां पर 150 साल की आयु होती है और उसमें भी बीमारी का नामो निशान नहीं होता है। तो ये है हमारा इतिहास, जहां पर हर नर नारी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म हुआ करता था, जिसके लिए बताया कि शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यानी जानवरों में भी हिंसा की भावना नहीं हुआ करती थी। और ये जो पूरी पॉजिटिविटी संसार में वहां पर थी, उसका श्रेय किसको जाता है? हां जी, उसका श्रेय जाता है आत्मा को, क्योंकि आत्मा उतनी शुद्ध थी, आत्मा के संस्कार इतने अच्छे थे, इतने मर्यादित थे, संयमित थे, कि उसी का प्रभाव पूरे वातावरण में और नेचर में नजर आता था। सत्युगी दुनिया के लिए कहते हैं कि प्रकृति दासी हुआ करती थी। आज कभी भूतत्व तांडव मचा रहा है, भूकंप, आज कभी जल तत्व तांडव मचा रहा है, बाढ़, आज कभी वायु तत्व तांडव मचा रहा है, तूफान, वाह होंगी ऐसी बातें, हां जी, वाह होंगी ऐसी बातें, वहां ऐसी बातें नहीं होंगी। पांचों तत्व भी सुखदाई होंगे। तो परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर स्वर्ग की परिभाषा बताया है कि स्वर्ग वो दुनिया है जहां पर हर एक सुखी होते हैं। मैं सुखी हूं तो मेरे लिए स्वर्ग है, भले मेरे पड़ोसी का क्या भी होता रहे, नहीं, स्वर्ग वो दुनिया जहां सब सुखी होते हैं। तो इतने सुंदर दुनिया के रचनाकार कौन? इतनी सुंदर दुनिया के रचनाकार परमात्मा है। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी भगवान के अंदर जो शक्तियां और गुण हैं, उन्होंने वो सारी शक्तियां और गुण का कुछ अंश आत्मा में भरकर आत्मा को धरती पर भेजा था। और जब आत्मा गुणवान है, आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा प्योर है, आत्मा सोल कॉन्शियस है, तो सब कुछ अच्छा 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 चलता है। कहते हैं टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड किसी के लिए इंतजार नहीं करते। तो समय पार होता जाता है, सत्यु के 1250 वर्ष सुख शांति समृद्धि की जीवन को एंजॉय करते हुए पास हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं त्रेता युग में। त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज, गोल्ड से सिल्वर की वैल्यू कम हो गई। कोई भी चीज यूज के साथ नई से पुरानी होती है या नहीं होती है? आपने ब्रांड न्यू कोट खरीदा, आपने बहुत अटेंशन रखा, आप उसे नॉर्मल वॉश नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ती है आप उसे ड्राई वॉश ही कराते हैं, बहुत ज्यादा आप केयर लेते हैं, फिर भी साल भर के बाद उसकी चमक कम होगी? फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। ये संसार का नियम है, हर चीज नई से पुरानी निश्चित रूप से होती है। ऐसे ही आत्मा भी जब ऊपर से धरती पर आती है, आत्मा का घर आप सभी को पता है, आत्मा का घर परमधाम। तो जब आत्मा परमधाम से, अपने घर से, इस सृष्टि रंगमंच पर अपना खेल खेलने के लिए आती है, डाउन द ईयर्स उसकी शक्तियां और उसके गुण यूज होते जाते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर की गुणों में थोड़ी सी कमी और शक्तियों में कमी होती जाती है। इन सब चीजों में, गुण और शक्तियों में वो क्षीण होती जाती है। धीरे धीरे त्रेता युग आता है, और त्रेता को हम कहते हैं सिल्वर एज। सत्यु को यदि फुल कहेंगे तो त्रेता को कहेंगे 3/4, फुल पावर, फुल पोटेंशियल आत्मा में सत्युग में थी, त्रेता में क्या हो गया? 3/4। पर त्रेता युग भी वो समय है जहां किसी भी प्रकार का दुराचार, पापाचार, अन्याय, अत्याचार नहीं था। फर्क इतना था कि 100% आत्मा प्योर थी, त्रेता में थोड़ी प्यूरिटी कम हो गई, पर इम्प्यूरिटी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। तो परमात्मा की बनाए हुए दुनिया में पूरे साइकिल का आधा पीरियड सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलता है। इसलिए देखिए सत्ययुग और त्रेता युग इस आधे को राइट हाफ में दिखाया है। संसार में भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो हम किस हाथ से करते हैं? आज बच्चे को भी कोई चीज हम देते हैं और वो बाएं हाथ से लेता है तो हम टोकते हैं कि बेटा सीधे हाथ से लो, राइट हैंड से लो। दान देना होता है तो हम राइट हाथ से देना, राइट हैंड से देना ही उचित समझते हैं। तो ये दाहिना हिस्सा, राइट हाफ, ये शुभ का सूचक है, ये अच्छे का सूचक है। तो ये सृष्टि कल्प का जो आधा समय होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा होता है। और उसका एक मुख्य कारण होता है, हम सभी यानी वहां जो कोई भी होंगे वो सारे नेचुरली सोल कॉन्शियस होते हैं। सोल कॉन्शियस मतलब पीसफुल, सोल कॉन्शियस मतलब लवफुल, सोल कॉन्शियस मतलब ब्लिसफुल, सोल कॉन्शियस मतलब नॉलेजफुल, सोल कॉन्शियस मतलब पावरफुल। लेकिन एक शरीर लिया छोड़ा, दूसरा लिया छोड़ा, तीसरा लिया छोड़ा, चौथा लिया छोड़ा, क्योंकि आखिर रीबर्थ तो हो ही रहा है। इन द प्रोसेस धीरे 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 हम विस्मृत हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। हम भूल जाते हैं कि हमारा घर परम धाम है और हम धीरे धीरे इसी दुनिया में इसी खेल के अंदर इंडल्ज होते जाते हैं। ये घर मेरा, ये चीजें मेरी, ये भाई मेरा, ये बहन मेरी, पदार्थों से, व्यक्तियों से, वैभवों से हम अटैच होते जाते हैं। और धीरे धीरे हमारी जो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति थी वो बॉडी कॉन्शियस स्थिति में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अगर इस हॉल में आप जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यदि आप हरेक को आत्मा की नजर से देखूं तो क्या फर्क है? मैं ये भाई साहब को भी आत्मा की नजर से देख रही हूं, मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, इनको भी चमकता हुआ सितारा देख रही हूं, मैं बहन जी को भी चमकता हुआ सितारा देख रही हूं, पीछे जो बैठे हैं उनको भी चमकता हुआ सितारा देख रही हूं, क्या डिफरेंस है? काला है कोई, गोरा है कोई, नाटा है कोई, लंबा है कोई, दुबला है कोई, मोटा है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे ही हम किसी को देह के नजर से देखना शुरू करते हैं तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे माइंड को टच करते हैं। ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये काला है, नाटा है, लंबा है। और ये बॉडी कॉन्शियसनेस सारे नेगेटिविटीज की जड़ है। जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस होना शुरू करते हैं ऐसे ही काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, हिंसा की भावना, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आती जाती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसका नतीजा क्या होता है? दुख और अशांति। त्रेता तक जीवन में दुख नहीं था, अशांति नहीं थी। परमात्मा ने हमें समझाया प्यूरिटी इज मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। अब जब आत्मा अपनी प्यूरिटी को खोने लगती है, यानी आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होने लगती है, तो जीवन में दुख और अशांति आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इम्प्योर होने लगती है तो नेगेटिविटीज उसे टच करते हैं और इन सारी नेगेटिविटीज का ही रिजल्ट है दुख और अशांति। मेरे जीवन में यदि दुख है तो उसका कारण मैं क्या कहूंगी? मेरे जीवन में यदि दुख है तो उसका कारण मैं क्या कहूंगी? मेरा बेटा बात नहीं मानता उसलिए दुखी हूं, सरकार का सिस्टम ठीक नहीं है इसलिए दुखी हूं। आज तक हम ऐसा सोचते थे, लेकिन अब आध्यात्मिकता हमें सिखाती है मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, मेरे अंदर की नेगेटिविटीज ही मुझे दुख की फीलिंग में लाती है। और ये सारी नेगेटिविटीज कहां से शुरू हुई? द्वापर युग से। तो द्वापर युग से अनेक धर्म पिताएं इस धरती पर आए। चलिए देखते हैं, आप देखेंगे सृष्टि चक्र का जो चित्र बनाया है इसको एक शेप दिया गया है। कौन सा शेप? स्वस्तिक, यानी सुअस्ति, यानी यहां पर जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। यानी ये सृष्टि नाटक के हर घटना में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। आप मानते हैं इस बात को? श्रीमद् भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहा गया है, अर्जुन जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा। आप में से कौन कौन मानते हैं इस बात को? हाथ खड़ा करिए। डिमोशन हो गया तो कहेंगे अच्छा हुआ, हां जी, यस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, आप में से मेजोरिटी उस एग्जांपल को सुने होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगी। और किसी को बहुत अच्छे से याद हो तो मैं चाहूंगी कि आप आके उस स्टोरी को सुनाएं। राजा और मंत्री की कहानी है। राजा की उंगली कटी और बुद्धिमान मंत्री ने कहा, महाराज जो हुआ बहुत अच्छा। किसको मालूम है ये स्टोरी? हां जी, आप में से कोई भी आ जाएंगे सामने सुनाने के लिए? भैया इनको एक माइक दे सकते? हां जी, आ जाइए आ जाइए। बहुत प्रॉपर सुना पाऊंगी सुना पाऊंगा सोचने की नहीं जरूरत है, आ जाइए। आपको जैसा भी आता है आप सुनाइए।
ये कहानी तो मैंने बहुत पहले सुनी थी, ये पढ़ी थी मैंने, फिर भी थोड़ी याद है उतनी बता देता हूँ मैं। कि जब राजा की उंगली कट जाती है तो मंत्री कहता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ।
माइक को थोड़ा नजदीक रखेंगे भैया तो?
अच्छा,
हाँ जी।
तो राजा इसे थोड़ा दुखी होता कि ये तो गलत कहा, तो उन्होंने कहा कि इसको जेल में डाल दीजिए, इसने ऐसा क्यों कहा। फिर राजा शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है, तो जंगल में जाता है तो वहां पर कुछ आदिवासी यानी कि जो जंगली आदमी होते हैं वो शिकार करते हैं, कि उनको राजा को देख करके उन्होंने उनको पकड़ लिया राजा को। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जब राजा को पकड़ा तो राजा को उसको उन्होंने देखा कि अपने आदिवासी उस कल्चर के हिसाब से कि ये यानी कि पूर्ण व्यक्ति है, पूर्ण पुरुष है कि नहीं है, तभी उसकी बलि दी जाएगी। तब उसका पूरा निरीक्षण करते हैं, तब उसकी उंगली कटी हुई मिलती है, तो बोला कि इसका यानी कि बलि नहीं दी जा सकती, तो राजा उससे बच जाता है उससे। तब राजा को वो बात याद आती है कि जो मंत्री ने कहा था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, तो तब उसको याद आया कि मैं आज देखो उसकी वजह से यानी कि मैं बच गया, कि उस दिन उसने सही कहा था। फिर उस राजा को छोड़ दिया जाता है, तब जाकर के वो राजा जाकर उस मंत्री को यानी जेल से छुड़ाता है।
बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप अपना नाम बताएंगे?
इंस्पेक्टर रामनारायण मीना, आईटीबी पुलिस।
वेरी गुड। इस स्टोरी में एक स्टेप आगे है। हाँ जी, आ जाइए। एक मिनट भैया, इनको माइक दे दीजिए।
ओम शांति। एक्चुअली इसका आगे स्टेप ये है, एक्चुअली राजा और मंत्री जब क्या बोलते हैं, हंटिंग के लिए निकलते थे हमेशा साथ में मंत्री को लेके जाते थे, तो उसको जेल में डाल दिया तो फिर मंत्री को लेके नहीं गया। फिर राजा आने के बाद पूछता है, आपको मैं जेल में डाला फिर ये भी अच्छा हुआ? तो बोला ये अच्छा ही हुआ ना, नहीं तो मैं आपका साथ आता था, फिर मैं तो पूरा ठीक ठाक था, तो फिर मेरे को बलि चढ़ा देते।
वेरी गुड, बजाइए बजाइए, अच्छे से ताली बजाइए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, यदि मैं पूछूं राजा की उंगली कटी क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो आप सब क्या बोलेंगे? अच्छा, मंत्री जेल गए अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप सभी बोलेंगे अच्छा हुआ। लेकिन जब मेरे लाइफ में कुछ होता है, डिमोशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हम उसी पॉजिटिविटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये भी अच्छा हुआ, एक पैर कटा तो हम ये सोच सकते हैं कि चलो दूसरा तो सही सलामत है। भगवान न करे अगर मेरे दोनों ही पैर कट गए तो मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम सांसें चल रही है, भगवान को याद करने का पुण्य तो मैं अभी भी ले सकती हूँ। डू यू गेट माई पॉइंट? जीवन में परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती जाती रहेंगी, लेकिन उसमें भी हमारी सोच कैसी है वो बहुत मैटर करता है। हम किस नजरिए से उस घटने को देख रहे हैं उसी के आधार पर हमें खुशी या दुख की अनुभूति होती है। तो परमात्मा ने कहा सृष्टि नाटक के निर्देशक चूंकि परमात्मा है तो उनकी निर्देशना में जो कुछ भी हो रहा है, हम अल्पज्ञ होने के नाते से हमें समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। जैसे राजा को उंगली कटते समय नहीं पता चला अच्छा क्या हुआ, लेकिन कहीं बाद में उन्हें समझ में आया कि जो हुआ अच्छा हुआ। जो इंसान जब जो घटना सामने आती है तब तुरंत अपने मन में ये विचार उत्पन्न कर पाता है कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, वो कभी विचलित नहीं होता। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये नाटक कल्याणकारी है, और अगर इस कल्याणकारी नाटक में सदैव खुश रहना है तो हमें एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो देखिए यहां बताया कि सत्युग में 100% निरोगी, संपत्तिवान और खुशहाल जीवन था। उसके बाद सत्युग का ये स्वर्ण काल का जो समय था इसको कहते हैं सोने के महल हुआ करते थे, और सोने के महलों में हीरे जवाहरतों की जड़त थी। माना समझ सकते हैं उस समय की समृद्धि कितनी बेमिसाल थी। 1250 वर्ष की इस अवधि में मात्र 8 ही जन्म हुआ करते थे, और हर जन्म में एवरेज आयु 150 साल की होती थी, और वहां बुढ़ापा नहीं होता था। आपके बाल सफेद नहीं होंगे, वहां 32 दांत आपके गिर जाए तो आप 32 सोने के दांत लगा सकते हैं, परंतु एक भी दांत गिरे और आपको सोने के दांत लगवाने पड़े वो नौबत नहीं आएगी। तो ये समय भी पार हो जाता है, और उसके बाद आता है त्रेता युग जिसको हम कहते हैं सिल्वर एज। जहां पर आत्मा की जो प्यूरिटी है वो 75% से लेकर त्रेता के अंत तक 50% तक डाउन हो जाती है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं है, इम्प्यूरिटी नहीं है, और ये राइट हाफ है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में ही भक्ति, पूजा, पाठ, जप, तप, आराधना, दान, पुण्य सब कुछ शुरू होता है, क्योंकि हर बात में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है, कोई रिच है कोई गरीब है, तो ये सारी बातें आती हैं। अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, दुख शांति की बातें होती हैं, तब मनुष्य को लगता है कि भाई किसी को पूजा करें, किसी को प्रार्थना करें ताकि हमारे ये दुख शांति की बातें दूर हो जाएं। तो भक्ति, पूजा, पाठ सब बातों की शुरुआत द्वापर से हुई, और उसमें भी पूरे विश्व के इतिहास में भारत का ही इतिहास सर्व पुरातन है, और भारत के इतिहास में भी सबसे पहला मंदिर जो बना वो सोमनाथ का मंदिर बना, राजा विक्रमादित्य ने बनाया लगभग द्वापर की शुरुआत में। यानी भक्ति भी पूजा भी शिव की पूजा से ही शुरू हुई। उसके बाद हमारे सत्युग में जो विश्व महाराजन विश्व महारानी रहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, त्रेता में जो महाराजा महारानी रहे श्री राम श्री सीता श्री राधे श्री कृष्ण, जो इसी धरती पर बहुत ही उत्तम चरित्रवान गुणवान जीवन व्यतीत करके गए, हमने उनको भी भगवान का दर्जा देकर उनकी भी पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। तो एक परमात्मा निराकार की पूजा शिवलिंग के रूप से, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा, और उसके साथ साथ और किसकी पूजा की हमने पूजा, और किसी को की नहीं पूजा, हमने तत्वों को भी पूजा, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वृक्ष देवता, क्योंकि देवता की परिभाषा है जो देता है सो देवता है, वृक्ष हमें फल छाया जो भी दे रहा है उसको हमने क्या कहा? देवता। और जो देवता थे वो क्या बन गए? जो देवता थे वो अपने प्यूरिटी, अपने पावर और अपने गुणों को गंवाते गंवाते वो लेवता बन गए। क्या बन गए? वो लेवता बन गए। माना वही देवताएं, लेकिन उनकी स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई? डिग्रेड होती चली गई। और यही द्वापर युग है जहां अलग अलग धर्म पिताएं आए। सर्वप्रथम इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म स्थापन किया। जो लोग धर्म और न्याय के मार्ग से थोड़े गुमराह हो रहे थे, उन्हें अच्छी बातें, धर्म की बातें, न्याय की बातें सुनाकर उन्हें फिर से धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। ये करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। आज से 2250 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। तब उन्होंने देखा संसार में इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार की वाणी में मुख्य बात यही कहा कि इच्छाएं ही, कामनाएं ही दुख का कारण है। अपनी कामनाओं को कम कर दो तो ऑटोमेटिकली दुख भी कम हो जाएंगे। तो लोगों ने इस बात के सत्यता को भी रियलाइज किया और जिनको अच्छी लगी वो बात उन्होंने उनको फॉलो किया। उसके बाद आज से लगभग अभी 2023 साल हुआ समझ लीजिए, जीसस क्राइस्ट आए। उन्होंने देखा मनुष्य के प्रति जो प्रेम की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए वो धीरे धीरे मिस होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। मानव से प्रेम करो, मानव की सेवा करो, वही भगवान की सेवा है। हर धर्म पिता ने बातें अच्छी ही सुनाई, तो जिनको उनकी फिलॉसफी अच्छी लगी वो उन्हें फॉलो करने लगे। तो देखिए, एक धर्म था सत्ययुग और त्रेता युग में, एक ही धर्म था, और उस धर्म का नाम क्या था? उस धर्म का नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन अब इब्राहिम, इस्लाम धर्म ऐड हो गया, बौद्ध धर्म ऐड हो गया, क्रिश्चियन धर्म ऐड हो गया, आगे आदि शंकराचार्य आए, सन्यास धर्म ऐड हो गया, फिर गुरु नानक आए, सिख धर्म ऐड हो गया। तो एक धर्म से क्या हो गया? अनेक धर्म हो गए। ऐसे ही एक भाषा से अनेक भाषाएं, एक कुल से अनेक कुल। तो एकता से धीरे 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 हम अनेकता की ओर आगे बढ़ते चले गए। और ऐसे करते करते, भक्ति पूजा पाठ करते करते हम कहां पहुंच गए? द्वापर भी 1250 वर्ष भी पार हो गया। द्वापर को कहते कॉपर एज, गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, वैल्यू और कम हो गई। अब ये 1250 वर्ष द्वापर के भी पार हो गए। और उसके बाद आया कलयुग। द्वापर में आप देखिए, ये जो आम है ये आम बाएं तरफ दिखाया है। सत्ययुग के बिगिनिंग में आर्म जो था टॉप में था, त्रेता में वो हाथ नीचे की ओर आ रहा है, यानी पॉजिटिविटी में गिरावट हुई, नेगेटिविटी नहीं है। द्वापर में आर्म लेफ्ट की ओर जा रहा है, यानी नेगेटिविटी की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे हम कलयुग की ओर आगे बढ़ते गए तो वो आर्म ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी नेगेटिविटी में और वृद्धि आती चली गई। यानी ये अपवित्रता अब 100% अपवित्रता में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जहां पर दुख, अशांति, लड़ाई, झगड़ा, स्वार्थ, अत्याचार, दुराचार, पापाचार का आज बोलबाला है। आज जो ऑनेस्ट लोग हैं वो सफर करते हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि उसका रिजल्ट अल्टीमेट अच्छा ही आता है, लेकिन एक बार स्ट्रगल जरूर करना पड़ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये एक साइकिल है। और कलयुग, कली का अर्थ क्या है? कली का अर्थ क्या है? कलह और क्लेश। आज घर घर में झगड़ा, घर घर में अशांति है। आज दो भाइयों का इकट्ठे रहना, कितनी ज्वाइंट फैमिलीज आपको मिलेंगी? बहुत 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 थोड़ी ज्वाइंट फैमिलीज, क्योंकि आपस में जो प्रेम सद्भावना प्यार होना चाहिए वो सारी बातें धीरे धीरे गायब सी होती चली गई है। और कलयुग में दिखाया है हर प्रकार से अन्याय अत्याचार बढ़ गया है। सृष्टि का एक नियम है, जब किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर उसका अंत निश्चित है, और अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। रात के बाद सुबह भी आता है। तो ऐसे ही परमात्मा हमें समझाते हैं, कलयुगी घोर अंधियारी रात के बाद सत्युगी सुनहरा सवेरा भी आने वाला है। और अभी हम कहां बैठे हैं? आज का बच्चा बच्चा कहेगा कि दीदी कलयुग चल रहा है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऋषि विश्वविद्यालय में आकर जब हमने समझा कि अब कलयुग का अंत और सत्युग के आरंभ का ये संधि काल चल रहा है, तब हमने समझा कि अभी संगम युग चल रहा है, और ये है युग परिवर्तन का समय। ये वो समय है जब हम कहेंगे कलयुग जा रहा है और क्या आ रहा है, सत्युग आ रहा है। सत्युग के आने से पहले कलयुग का महाविनाश भी होना है। और परमात्मा ने हमें कहा ये सृष्टि के महाविनाश के तीन कारण होंगे। एक है नेचुरल कैलमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप बाढ़ सुनामी आदि आदि। दूसरा है सिविल वॉर, सांप्रदायिक दंगे, और तीसरा है एटॉमिक वॉर। और हम सभी भली भांति जानते हैं कि आज इतना एटॉमिक पावर हमारे पास है कि इस विश्व को अनेकों बार खत्म करने की एटॉमिक पावर हमारे पास है। तो जब एक्सट्रीम है तो एंड भी होना है, लेकिन ये एंड भी कल्याणकारी है, ये विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि विनाश के बाद ही इस धरती पर पुनः वो सत्युग का आगमन होने वाला है। तो देखिए यहाँ चित्र में बताया है, आप ये देख रहे हैं घड़ी का काटा फिरते 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 फिर से 12 बजने को आया है। तो ये जो बीच का संधि काल जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखाया है वो है संगम युग, और ये संगम युग जो है ये है अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स, जबकि परमात्मा का धरती पर दिव्य अवतरण होता है। जैसे हमने आपने मातृ गर्भ से जन्म लिया है, परमात्मा का इस प्रकार से मातृ गर्भ से जन्म नहीं होता है, लेकिन परमात्मा का परकाया प्रवेश होता है। एक सिंपल सी बात आपसे पूछती हूँ, जब हमारा बच्चा बिगड़ता है तो उसको सुधारना किसकी जिम्मेदारी होती है? हाँ जी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, राइट? बच्चा बिगड़ता है तो माँ बाप का जी दुखता है, और माँ बाप हर संभव कोशिश करते हैं ताकि बच्चा सीधे रास्ते पे आ जाए। यस और नो? यस। हम किसके बच्चे? सभी मानते हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे प्रश्न है, हम भगवान के सुधरे हुए बच्चे या बिगड़े हुए बच्चे? जो इस बात को मानते हैं कि हम भगवान के बिगड़े हुए बच्चे, वो जरा हाथ खड़ा करिएगा, करिए। अच्छा, जो समझते हैं हम भगवान के सुधरे हुए बच्चे, वो जरा हाथ खड़ा करिएगा। अरे वाह, हम बिगड़े हुए कैसे? हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम ईमानदारी से चलते, हम बिगड़े हुए कैसे हैं? परंतु यदि हम अपने आप से पूछे, क्या हम गुस्सा नहीं करते? क्या हमारे में ईर्ष्या की भावना कभी नहीं आती? क्या हमारे में बदले की भावना कभी नहीं पनपती? यदि हाँ, तो हम अपने आप को सुधरे हुए बच्चे नहीं कह सकते। हमें कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान ने हमें जैसा बना के भेजा था, आज हम वैसा नहीं है। बिगड़ गए, हाँ कोई कम कोई ज्यादा, पर हम सारे लोग बिगड़ गए हैं। अब बताइए हम बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना किसकी जिम्मेदारी? हां जी, हमारे पिता परमात्मा की जिम्मेदारी है। आज अगर हमारे घर में बच्चा बिगड़ता है तो उसको हम कैसे सुधारते हैं? उसको समझाते हैं, देखो बेटा तुम खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे रिजल्ट कम आएगा, ये वो, एक प्रकार से नहीं समझता तो दूसरे प्रकार से समझाते, आज उसका समझने का मूड नहीं है तो आज हम छोड़ देते हैं फिर कल मौका देख के फिर समझा, यस और नो? यस और नो? तो हमें भी सुधारने के लिए समझाने का काम किसका है? हमारे पिता परमात्मा का है। पर मेरा आपसे प्रश्न है, आपको परमात्मा का संपूर्ण परिचय मिल चुका है, परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा नीले आसमान से पार, वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, परम धाम में, ब्रह्म लोक में है, वो हमें सुधारेंगे कैसे? यही समस्या है, कष्ट देकर। बेशक मनुष्य को मनुष्य की भाषा में ही समझाने की जरूरत है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूं, पर शॉर्ट में बता रही हूं, एकमात्र तरीका है एक उपयुक्त मानव तन को परमात्मा अपना माध्यम बनाकर उनके मुख से उनकी सारी अनमोल शिक्षाओं को भगवान हमारे तक पहुंचाते हैं ताकि हम उन शिक्षाओं को समझकर हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, ये शुरू हुआ सन 1937 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हम सबने इतिहास पढ़ा है कि भारतीयों के साथ अंग्रेज कैसा सलूक करते थे। तब हमारे पिता परमात्मा को लगा कि दिस इज टू मच, नाउ आई नीड टू डू समथिंग। और तब उन्हें एक माध्यम का तलाश था। आप जब अपने अपने सेंटर्स पर जाएंगे तो आप ये जो जानकारी अभी लेते आ रहे हैं, आई एम श्योर कि इस जानकारी को आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अभी आप इस जानकारी को संपूर्ण रीति से अवश्य लेंगे। तो हमारे हर मेडिटेशन सेंटर पे आप एक चित्र देखते हैं जिनको हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो वो एक साकार माध्यम रहे जिनका नाम दादा लेखराज था, जो हीरों के व्यापारी थे, परंतु उन्हें भगवान की खोज थी और भगवान को एक माध्यम की तलाश थी, एंड इट बिकेम अ परफेक्ट मैच। परमात्मा ने उनके तन को अपना माध्यम बनाया। क्वेश्चन उठ सकता है, वही क्यों? क्वेश्चन उठ सकता है, वही क्यों? लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये भी सत्य है, अगर वो ना होते, कोई और होता, तो भी प्रश्न उठता, वही क्यों? यस और नो? यस और नो? तो भगवान को पता है किस माध्यम के द्वारा मेरा काम बखूबी मैं कर सकता हूं, तो इट वॉज गॉड चॉइस। उन्हें वो माध्यम उपयुक्त लगा, परमात्मा ने उन्हें अपना माध्यम बनाया और उनके मुख के द्वारा जो शिक्षाएं उन्होंने दी, वही शिक्षाएं आपको राइट फ्रॉम 23rd यहां पे दी जा रही है। चाहे वो गिरीश भाई जी हैं, चाहे वो स्वामीनाथन भाई जी हैं, चाहे कमला दीदी हैं, चाहे हम हैं, चाहे हमारे कैप्टन शुभ भाई जी हैं, चाहे कर्नल सती भाई जी हैं, चाहे ब्रिगेडियर हरवीर भाई जी हैं, हम जो कुछ भी आपको सुना रहे हैं ज्ञान की बातें, वो कुछ भी हमारा अपना, ये सब कुछ उस परमात्मा का दिया हुआ संपूर्ण और सत्य ज्ञान है, जिस ज्ञान को जीवन में आजमाने पर हमें समझ में आता है कि ये ज्ञान हमारे जीवन में महापरिवर्तन का एक बहुत सुंदर सा टूल बन सकता है। तो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की अवधि है 100 साल, 1937 से शुरू हुआ, तो आप समझ सकते हैं और कितने साल बाकी हैं। इसलिए परमात्मा कहते, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, शिव कहे सुन आत्मा, व्यर्थ क्यों समय गवाए। इसलिए बहुत खूब किसी ने कहा, फूल खिलते हैं, खुशबू बिखर जाती है और भगवान के दर पर आने से किस्मत बदल जाती है, भगवान के दर पर आने से किस्मत बदल जाती है। मान कर चलिए आप सभी यहाँ आए हैं, चाहे कोई भी निमित्त कारण बना, लेकिन आखिर आप आए हैं भगवान के बुलावे पर, और ये पक्का 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 है कि आपकी किस्मत बदल गई है, बदलने वाली है नहीं, बदल गई है। क्योंकि जैसे ही हम अच्छाइयों को जीवन में अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में महापरिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ये एक साइकिल है, तो कलयुग के बाद पुनः इस धरती पर सत्युग आने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी की आबादी कितनी है? हाँ जी, लगभग 800 करोड़, राइट? अभी की आबादी है 800 करोड़। सत्युग की आबादी कितनी होगी? एनी आइडिया? जिनको पता है, जो हमारे 7 डेज कोर्स किए हुए हैं, वो प्लीज मत बताइएगा। हाँ जी, वहां भी इतनी होगी? विवेक कहता है इतनी नहीं होगी, कम होगी। यानी यहां के 800 करोड़ की आबादी से वहां जाने वाले लोगों का सिलेक्शन होगा। दुनिया में क्या चलता है? इलेक्शन। और भगवान के पास क्या चलता है? सिलेक्शन। मेरा क्वेश्चन है, सिलेक्शन का बेसिस क्या होगा? बैंक बैलेंस? कितनी महंगी गाड़ी है? कितने ऊंचे औहदे पर पहुंचे हैं? कितना? हाँ जी जी, अच्छा। परमात्मा हमें कहते हैं, वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कितने अच्छे संस्कारों को हमने अपने जीवन में उतारा है, कितने गुणों को हमने अपने अंदर भरा है, कितने शक्तियों को हमने परमात्मा से अपने मन को जोड़कर अपने अंदर जमा किया है। एक समय था जब हम देवता थे, और देवताओं का हाथ कैसा था? ऐसा, am I right? Flowing। देवताएं कहते हैं 1313 और मेरा भी 13, इसको कहते हैं डिविनिटी। जब हम नॉर्मल ह्यूमन बन गए द्वापर में, तब हमने क्या कहा? मेरा सो मेरा, 1313। अब धीरे धीरे वो ह्यूमैनिटी भी खत्म हो गई। आपको पता होगा, अभी जो योगा डे हमने सेलिब्रेट किया, उसमें थीम क्या रखा था? मानवता, ह्यूमैनिटी थीम रखी थी, क्योंकि मानवता खत्म होती जा रही है, इसलिए मानवता को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। तो मानवता खत्म हुई तो क्या आ गई? मानवता खत्म हुई तो हमारे में दानवता आ गई, और दानव क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा, और ये जो हड़प प्रवृत्ति, इसको कहते हैं दानवता। अब आप अपने आप को जांच लीजिए, मैं कहां हूं? देवता बन के आए थे, हो सकता है हम मानव स्थिति में हो, हम दानव न बने हो, बहुत अच्छी बात है, हम मानव है, दानव है, क्या है, अपने आप को जांच लीजिए। बनना क्या है? बनना क्या है? देवता। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सिखाया जाता है कि हम देवता थे, हमारे ही अंदर वो देवताई गुण और शक्तियां भरी हुई हैं, लेकिन डाउन द एजेस हमारे अंदर की वो देवताई गुण और शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब परमात्मा धरती पर आकर हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम ही वो देव मानव हो, तुम ही देवता थे, तुम्हारे अंदर वो गुण और शक्तियां हैं, वो केवल सो गई हैं। हमें उसे क्या करना है? हमें उसे जागृत करना है। और जैसे ही हमारे अंदर की वो देवताई गुण और शक्तियां जागृत होंगी, ये सारी जो नेगेटिविटीज आ गई है वो क्या होंगी? वो सो जाएंगी, आउट हो जाएंगी, आप कुछ भी कहिए, और उसके बाद आने वाली दुनिया के लिए हम एक उपयुक्त पात्र कहे जाएंगे। तो परमात्मा ये सृष्टि चक्र का नाटक हमें बताते हैं और इसकी पुनरावृत्ति का समय पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 5000 वर्ष। यानी आप जो यहां आए हैं, आप में से कौन कौन है जो पहली बार आए हैं यहां पर माउंट आबू, मेजोरिटी, क्या बात है। अच्छा, आपको एक रहस्य बताते हैं जो परमात्मा ने हमें बताया। आप यहां पहली बार नहीं आए हैं, 5000 साल पहले भी आए थे और 5000 साल के बाद भी आएंगे, और ये 5000 साल का चक्र न जाने कितनी बार फिर चुका है, उसकी कोई गिनती नहीं है। यानी आप यहां पहली बार नहीं, आप यहां अनगिनत बार आ चुके हैं। जैसे वो ड्रामा 3 घंटे की होती है ना फिल्म, एक बार रिकॉर्ड हो गया, फिर आप जितनी बार भी उसको प्ले करेंगे वही वही बचेगा, उसी सीक्वेंस से बचेगा, राइट। तो ऐसे ही ये 5000 वर्ष का इटर्नल वर्ल्ड साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हमें पता नहीं है आगे जो है वो पूर्व निश्चित है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि क्या पूर्व निश्चित है, इसलिए प्रति पल हमें नया लगता है और कुछ नई बात होनी है, कुछ नया और अच्छा करना है। उसी उमंग के साथ, उसी उत्साह के साथ हम अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए, हमारे साथ अच्छे से अच्छा हो, उस प्रयास में हम लगे रहते हैं। इसलिए कहा, बनी बनाई बन रही, बनने को कुछ ना ही रही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी तो यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये पहले भी हो चुका है। जो सिचुएशंस आप आज फेस कर रहे हो उसे आप अनेकों बार फेस कर चुके हैं, अनेकों बार आप इसे क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी क्रॉस करना, अभी फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस एंटायर साइकिल में, इस एंटायर सफर में, स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखकर हम एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि पूरे सफर में भगवान हमारा साथी है। सफर कितना ही लंबा हो, सफर कितना ही कठिन हो, यदि एक अच्छा साथी मिल जाए तो, हाँ जी, क्या होता है वो लंबा सफर भी आपको मिनटों का सफर लगता है और वो कठिन सफर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस सूर्य विश्वविद्यालय में हमें यही सिखाया जाता है कि जीवन में हर प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन भगवान को साथ में रखते हुए, भगवान के दर्शाए हुए उन सारे नियम मर्यादाओं को अपने सामने रखते हुए यदि हम अपने जीवन को आगे से आगे चलाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य क्या होगा। आज जो हमें प्राप्त है वो हमारे अतीत का फल है, जो हम आज कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। और यदि आज हम अवेयर हो गए और अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हमारा फ्यूचर के लिए हमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये निश्चित है कि हमारा भविष्य भी बहुत ही उज्जवल होगा, सुंदर होगा। तो यही शुभकामना रखते हैं कि सत्युग में, मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ, आप ये नहीं पूछना ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं ये हमारा खुद का नहीं है, ये सारा कुछ भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। यहाँ के 800 करोड़ की आबादी में से सत्युग के बिगिनिंग में मात्र 9 लाख की आबादी आएंगी। अब मुझे बताइए वो 9 लाख में कौन कौन आना चाहते हैं, पर मान के चलिए गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या छोड़ना पड़ेगा, बदले की भावना छोड़नी पड़ेगी, अपने अंदर की हर बुराई को छोड़ना पड़ेगा और हर अच्छाई जिसकी कमी है हमें उस हर अच्छाई को अपने जीवन में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अभी परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। कमर सीधी, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठेंगे। समय चक्र का जो ज्ञान मिला उसके आधार पर गहराई से महसूस करेंगे क्या थे, क्या बन गए हैं और क्या बनना है। अपना ध्यान मस्तक के बीच, अपने आप को देखिए, एक दिव्य चमकता हुआ सितारा। मुझ चमकती हुई ज्योति से प्रकाश की किरणें निकलकर मेरे इर्द गिर्द फैल रही है। मैं इस धरती पर एक विशेष आत्मा हूं। महान आत्मा हूं। जब मैं आत्मा इस धरती पर आई थी, मेरे अंदर सारे गुण थे, सारी शक्तियां थी। मैं आत्मा 100% प्योर थी। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सद्भावना, हर एक गुण से मेरा जीवन अनमोल था। मैं भगवान के इस बगीचे की एक खुशबूदार फूल, मेरे अच्छाइयों की महक पांचों तत्वों में व्याप्त था। जीव जंतु, पेड़ पौधे और पांचों ही तत्व सुखदायी थे। ये मेरा ही अतीत है। सृष्टि रंगमंच पर जन्म लेते लेते मेरे गुण और शक्तियां क्षीण हो गई। मैं देवता से लेवता, मेरे अंदर इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती चली गई। दुख शांति से जीवन परेशान हो गया। अब मुझे समझ आई है, समय बदल रहा है, युग परिवर्तन की वेला है। कलयुग जा रहा है, सत्युग सुनहरा सवेरा आ रहा है। स्वयं परमात्मा धरती पर अवतरित हैं, मेरे पिता परम हितैषी, मेरे सच्चे मार्गदर्शक
उनकी नजर मुझ पर पड़ी है। वो मुझे एहसास दिला रहे हैं, बच्चे तुम ही देवता थे, तुम्हारे में ही दैवी गुण और शक्तियां समाई हुई थी। अब एक गहरा आत्मविश्वास मुझे फिर से वैसा बनना है जैसा भगवान ने मुझे शुरू में बनाकर भेजा था, सुखदाई, गुणवान, चरित्रवान, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। महसूस करें भगवान की दिव्य अनंत किरणें ऊपर से बरसात की तरह मुझ पर पड़ रही है। समाते जाए उन किरणों को, जैसे जैसे वो किरणें मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा में प्रवेश कर रही है, ऐसे ऐसे अंदर का सारा कचरा, ईर्ष्या, द्वेष बाहर निकल रहा है। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा पुनः पवित्र बनती जा रही हूं। संपूर्ण पवित्र, मेरे मन में सबके लिए प्यार, सबके लिए गुड विशेस, सारे संसार के लिए बहुत शुद्ध भावना, सबका भला हो, सब सुखी हो, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कि मुझे फिर से ऐसा बनना है। भगवान का हाथ और उनका साथ, सदा ही मेरे साथ है। एक बहुत अच्छी फीलिंग। युग परिवर्तन की इस वेला में मुझे अपने आप को आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए तैयार करना है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें, उन्होंने मुझे यहां बुलाया ये सब कुछ सुनने, जानने और सीखने का, रियलाइज करने का अवसर दिया। ओम शांति।